बार ये निश्चय किया कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर कुछ प्रकाश डाला जाए, उसके पहले थोड़ी भूमिका पे विचार करें हम थोड़ा सा। उसके लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो वस्तु का निर्देश। भागवत यदि आप विचार करेंगे तो इतना गहन है कि श्रीधर स्वामी जैसे विद्वान और महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे भक्त हृदय, दोनों व्यक्तियों के चित्त को परिपूर्ण शांति प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत है। जहां ज्ञानी का ज्ञान पूर्ण हो जाता है और भक्त की भक्ति पूर्ण हो जाती है, वो श्रीमद् भागवत है। जहां भक्त को पूर्ण संतोष मिलता है और ज्ञानी को पूर्ण आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसका नाम भागवत है। इसमें भगवान वेद व्यास की स्वयं करुणा है और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आप लोगों ने भी सुना है, जिस स्त्री की संतति न हो गर्भ की पीड़ा क्या होती है वो नहीं जान सकती। जीवन में सब कुछ करने के बाद भी जब आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो आदमी आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाता। अध्यात्म जगत में भी वेद व्यास एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 17 पुराण, ब्रह्मसूत्र, अध्यात्म की जितनी गहराइयों में जाया जा सकता है, और ये कहें कि अध्यात्म की जितनी गहराई है और अध्यात्म की जितनी ऊंचाई है, उतनी गहराई में डुबकी लगाई, उतनी ऊंचाई में उड़े, लेकिन जीवन में फिर भी एक अधूरापन था। जीवन में फिर भी एक असंतोष था। उस असंतोष को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। आप विचार करो, बुरा नहीं मानना आप। तुम ब्रह्मसूत्र पढ़ते हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी दिखती है ब्रह्मसूत्र जैसी? न पढ़ने वाले के जीवन में दिखती है, न पढ़ाने वाले के जीवन में दिखती है। पढ़ाने वाले को ऐसा लगता है जिससे कैसे किसी ने करंट लगा रखा है पीछे से। अरे जब स्वयं वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र बनाया, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। तुम पढ़ते हो, उसमें से पढ़ाने वाला कितना पढ़ाता है और समझने वाला कितना समझता है, लेकिन बात यह है कि मालूम है गालिब मुझे जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने का ख्याल अच्छा पढ़ाने वाले की अपनी समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत एक मोक्ष ग्रंथ है, एक अध्यात्म भौतिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न और इतना संपन्न कि सब भौतिक पदार्थ पाने के बाद भी वो व्यक्ति मृत्यु के भय से आक्रांत है। अपार संपदा है, उसकी परीक्षित की गद्दी का वर्णन कभी आप पढ़ो महाराज तो आपको आश्चर्य होगा कितनी संपदा है। लेकिन एक मृत्यु के समाचार ने उसके जीवन में खलबली मचा दी। जैसा कोई आदमी स्वस्थ हो, अचानक पेट में दर्द हो उसके, और वो चेकिंग करने के लिए चला जाए, अचानक कैंसर की बात सामने आ जाए, तो जीवन की खुशियां कहां चली जाती हैं। ऐसे ही अपार संपदा का मालिक और उसको एक खाली इतनी सूचना मिल गई कि 7 दिन के बाद तुम मरोगे, उसके जीवन में कितनी खलबली मच गई। जीवन निरर्थक मालूम पड़ने लग गया, यद्यपि मृत्यु निश्चित है लेकिन जीवन की व्यर्थता मालूम पड़ने लग गई। उस जो जीवन व्यर्थ मालूम पड़ रहा था, उस जीवन को सार्थक बनाया जाए उसके लिए उसके सामने कुछ चाहिए थोड़ा सा, और सार्थक बनाने वाला कोई महापुरुष, ऐसा महापुरुष चाहिए जो स्वयं उस चीज को जिया हो, जिसने स्वयं जाना हो। यदि ऐसा महापुरुष उपलब्ध होता है तो जीवन की कृतार्थता हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। प्रश्न दो मैं श्लोक पहले बताऊंगा, उसके बाद दशम स्कंद आरंभ करूंगा। एक तो कभी हमने उसके ऊपर व्याख्यान किया यहां पे, एक तो श्री कृष्ण के प्रति जो लगाव है वो क्यों है, और भागवत में किस चीज का निरूपण किया गया। तो आपने श्लोक सुना है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः। यहां पर क्योंकि ये मूल भागवत का श्लोक नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा, ये कहां का है? पद्म पुराण का है, भागवत के महात्म्य का श्लोक है, ये महात्म्य का श्लोक है। इसलिए यहां पर श्री कृष्ण का निर्देश किया गया, और भागवत का प्रतिपाद्य विषय तो आगे बताया गया। तो यहां पर जो बता रहे हैं, मैंने कभी आपको दृष्टांत देके समझाया था, जब आप किसी को स्वयं को समर्पित करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने को समर्पित करते हैं जो आपसे श्रेष्ठ हो। शादी के लिए अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, अथवा लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो कैसी लड़की देखते हैं, कैसा लड़का देखते हैं आप? जो लड़की से भी श्रेष्ठ हो। लड़की यदि देखनी है तो ऐसी देखते हो जो लड़के से भी श्रेष्ठ हो। अब श्रेष्ठ है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन देखता आदमी उसे है जो उससे श्रेष्ठ हो। अपने से श्रेष्ठ की प्राप्ति की ख्वाहिश है। और खोजने में हमारी जो सहायता करती है वो कौन है? बुद्धि। आप हमेशा एक ख्याल रखना, परमात्मा की जो संपूर्ण सृष्टि है उस सृष्टि में सबसे सुंदर यदि कोई सृष्टि है तो बुद्धि है। आपको मालूम होगा अभी दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है, साइंसदान जो है, वो ब्रिटेन का है। क्या नाम उसका है? नहीं नहीं, स्टीफन हॉकिंस। अच्छा, वो चल नहीं सकता है। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, वो व्हील चेयर पे बैठा रहता है। मैंने देखा उसको, फोटो में देखा, वीडियो पे देखा, वो चल नहीं सकता। वो ऐसा झुका हुआ है, खा नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को वो जानता है। किसका कमाल है? वो बुद्धि का कमाल है। तो परमात्मा की सबसे सुंदर यदि कोई कृति है, मैंने सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कोई अंश यदि है तो वो बुद्धि है। जरा इस बात को ध्यान में रखेंगे तो भागवत समझ में आएगी थोड़ी सी। सबसे सुंदर बुद्धि है। जगत में बुद्धि अपने को किसी भौतिक पदार्थ को समर्पित नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसके बाद जो भी बना है वो बुद्धि से घटिया बना हुआ है। सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ बना है तो बुद्धि है। और बाद बाकी सब बुद्धि से निकृष्ट है। तो यदि आप अपने से निकृष्ट से जुड़ते हैं तो थोड़ी देर आप उलझ सकते हैं, लेकिन आपके चित्त का समाधान नहीं हो सकता। चित्त का समाधान आपको तभी हो सकता है जब आप अपने से श्रेष्ठ को प्राप्त करते हैं। तो सृष्टि में सब कुछ बुद्धि से निकृष्ट है, और बुद्धि से यदि कुछ श्रेष्ठ है तो क्या है? बुद्धि को बनाने वाला परमात्मा। तो बुद्धि यदि कभी संतुष्ट होगी तो सृष्टि के किसी पदार्थ से बुद्धि संतुष्ट नहीं हो सकती। बुद्धि यदि संतुष्ट होगी तो सृष्टा को पाकर के ही बुद्धि संतुष्ट होगी, और सृष्टा के सिवाय वो किसी को पाले तो बुद्धि संतुष्ट नहीं हो सकती। एक पहले निश्चय कर लो, सृष्टा के सिवाय जो भी मिल जाए। इसलिए आप देखो, पहले आईफोन कितना पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, अभी कौन सा आ गया? अभी दसवां आ गया, अभी ग्यारहवें की तैयारी चल रही है। सृष्टि में जिस चीज के लिए कभी बुद्धि संघर्ष करती है, व्यक्ति संघर्ष करता है, कुछ समय के बाद वही चीजें व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी स्कूल में मिली तुम्हें पहली पहली बार, तो उसको मिलने के लिए तुम कितने तड़पते थे। लेकिन शादी हो गई तो बात करने की फुर्सत नहीं है। ये तुम्हारा दोष नहीं है, यदि ऐसा है तो तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि संसार का कोई भी पदार्थ बुद्धि को बहुत समय तक अपने में उलझा के नहीं रख सकता। बुद्धि उस वस्तु की पोल पट्टी जान लेती है, और जिसकी आप पुल पट्टी जान लो वो अभी जितने बड़े बड़े श्रीमान लोग थे अब उनकी पोल पट्टी जान गए तो क्या हाल है उनके। तो इसलिए ये बुद्धि सृष्टि के किसी पदार्थ में क्यों, उसका कारण यह है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वो बनी हुई है। कृष्ण ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बुद्धि तो उसको प्राप्त करने का साधन है, बुद्धि किसी भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने का साधन नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम मरुमरीचिका को जल समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, इसी प्रकार बुद्धि कभी किसी भौतिक पदार्थ को इतना श्रेष्ठ समझ लेती है, वो श्रेष्ठ है नहीं। श्रेष्ठ होना अलग बात है और श्रेष्ठ समझना अलग बात है। बुद्धि उसको श्रेष्ठ समझ लेती है और फिर जितना संघर्ष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना है उतना ही संघर्ष बुद्धि किसी भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए करती है। हम लोग बेवकूफ नहीं है सब, आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन एक भ्रम ऐसा हो गया, आप सब जानते हो यहां रहना किसी को नहीं है, सब कतार में खड़े हैं, गजब की कतार है और सबको ऐसा लग रहा है कि अब की बारी दूसरे की बारी है। अपनी बारी कब आएगी पता नहीं है। इसीलिए महाभारत में महाराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया किम महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य क्या है, उसने कहा यही महान आश्चर्य है कि रोज मरते हैं, मुर्दों को पहुंचा करके आते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये बात समझ में नहीं आती। और बड़ी एक कीमती बात यह है कि जो सहज यात्रा हमारी है, चाहे हम धन कमाते हो चाहे अर्थ कमाते हो, ये तो आपातता है, ये रास्ते में मिल जाते हैं, लेकिन जा तो हम मृत्यु की तरफ ही रहे हैं। ठीक है एक दिन कट गया आपने पैसे कमा लिए, लेकिन पहुंचे कहां आप, मृत्यु की तरफ पहुंचे। इसलिए व्यास जैसे व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा के अवतार होते हुए भी जब उनका असंतोष था, उस असंतोष को निवृत्त करने के लिए ये भागवत है। और जो ये श्लोक मैंने बताया आपको कि ये जो निर्गुण उपासना करते हैं उनके लिए भी है, जो सगुण उपासना करते हैं उसके लिए भी है। कभी हमने इशारा किया हुआ है आपको याद होगा, तो जब सबसे पहले आप अपनी लड़की की शादी करते हैं तो सबसे पहले लड़के का रूप देखते हैं, स्वस्थ है कि नहीं है ये देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि इस बुद्धि, जिस बुद्धि को जो परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है, इस बुद्धि को जब परमात्मा को समर्पित करना है तो जिसको समर्पित करना है, समर्पित का मतलब आपको फिर सिलेंडर हो जाना है वहां पे, फिर आपको आपको कुछ नहीं बोलना वहां पे। तो जिसको समर्पित होती है बुद्धि, सबसे पहले उसका रूप कैसा है, तो बोला सच्चिदानंद रूपाय। बुद्धि को बोला देख तेरे को इसको समर्पित होना है, किसको, तो जो सतस्वरूप है चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, तो बुद्धि को, बुद्धि ने उसको स्वीकार कर लिया। जब सबसे पहले शादीवादी करते हैं ना, तो सबसे पहले लड़के का फोटो भेजते हैं, तो बुद्धि को पहले फोटो भेजा किसका? परमात्मा का। तो क्या 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 कैसा परमात्मा है? सत, चित और आनंद। तो बुद्धि का जब सामने फोटो गया परमात्मा का, तो बुद्धि खुश हो गई। बुद्धि ने कहा मुझे पसंद है। पहली नजर में खुश हो गई हूं। फिर समझा सच्चिदानंद रूप आया। रूप अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन इसमें सामर्थ्य क्या है? खाली रूप अच्छा हो और सामर्थ्य कुछ ना हो तो ऐसे व्यक्ति को समर्पित होकर के कोई फायदा नहीं है। तो फिर बुद्धि को समझाया गया कि सच्चिदानंद रूपाया। कि देखो ये रूप का भी वर्णन है और स्वरूप का भी वर्णन है, आप ही ध्यान रखना थोड़ा सा। ये रूप भी है और स्वरूप भी है। तो सगुण उपासक के लिए रूप है और निर्गुण उपासन के लिए स्वरूप है। जो रूप मान करके चिंतन करते हैं वो उससे बंध जाते हैं, और जो स्वरूप मान करके चिंतन करते हैं वो तदरूप ही हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, चाहे रूप समझ करके चिंतन कर लो, चाहे स्वरूप समझ करके चिंतन कर लो। रूप मान करके चिंतन करोगे तो वृंदावन जाना पड़ेगा, श्रीनाथ जी जाना पड़ेगा। स्वरूप समझ करके चिंतन करोगे तो प्रेमपुरी में बैठ करके अंदर ही डुबकी लगा लो, मिल जाएगा वही। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जिस बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए इतने धक्के खाते हैं, यदि आंखें बंद करके कभी देखोगे उससे ज्यादा सुंदर ही तुम्हारे अंदर बांके बिहारी बैठे हुए हैं, वही तुम्हें वहां ले जा रहे हैं। और वो बांके बिहारी की मूरत है, और तुम्हारे अंदर क्या है? सूरत है। सूरत और मूरत में फर्क है, आपको मालूम होगा। तो तुम्हारे अंदर सूरत है और जगत में मूरत है। तो जहां बुद्धि थोड़ी अपरिपक्व है वहां मूरत को पकड़ना पड़ता है, और जब बुद्धि थोड़ी परिपक्व हो जाती है तब सूरत की तरफ जाने का प्रयास होता है। इसलिए परीक्षित चाहते तो कई तीर्थों की यात्रा कर सकते थे, लेकिन परीक्षित ने उत्तम समझा सूरत की तरफ जाना। तो अंदर लौट आते हैं, गहराई में चले जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। तो रूप श्रेष्ठ होना चाहिए और रूप के साथ साथ में सामर्थ्य होनी चाहिए। तो सामर्थ्य क्या है परमात्मा की? विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये परमात्मा की सामर्थ्य है। तो रूप भी श्रेष्ठ है और सामर्थ्य भी उत्तम है। तो बुद्धि ने कहा नहीं, मैं इसी से शादी करूंगी। फिर आप लोगों जैसा कोई समझदार बेटा था है? मधुसूदन जैसी बैठे समझदार आदमी बोले, भाई रूप भी अच्छा है, सामर्थ्य भी अच्छी है, जरा इसका स्वभाव तो देख लो। रूप भी अच्छा हो, सामर्थ्य भी हो, और स्वभाव यदि भयंकर हो तो क्या करोगे? काले नाग के जैसे स्वभाव हो तो क्या करोगे फिर? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये भगवान का स्वभाव हो गया, दुख को विनाश करना भगवान का स्वभाव हो गया। अब बुद्धि स्वयं को परमात्मा को समर्पित करने के लिए तैयार हो गई। ये जो गुण हैं ये सृष्टा के गुण हैं, सृष्टि के गुण नहीं है। जरा थोड़ा ध्यान में रखिएगा आपकी, क्योंकि आप अलग ढंग की भागवत सुनते हैं। ये सृष्टा के गुण हैं, ये सृष्टि के गुण नहीं हैं। इसलिए बुद्धि जब इतना निश्चय कर लेती है कि सृष्टि में कहीं मेरे को संतोष नहीं मिल सकता, सृष्टि में मुझे कहीं आत्मसंतुष्टि नहीं मिल सकती, तो बुद्धि का एकमात्र लक्ष्य सृष्टा हो जाता है। अब उस सृष्टा के स्वरूप का वर्णन भागवत के प्रथम श्लोक में किया गया है, जरा थोड़ा उसकी व्याख्या कर लें थोड़ी सी। क्या प्रथम श्लोक भागवत का है? जनमाद्यस्य यतः अन्वयतरतस्यार्थी सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। अब यहां देख लीजिए आप थोड़ा सा, श्री कृष्णम धीमहि नहीं लिखा, राम नहीं लिखा, शिव नहीं लिखा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये संप्रदायवाद से मुक्त ग्रंथ है, क्योंकि इसकी जो सुप्रसिद्ध टीका है, जिस टीका को सभी मानते हैं, सब टीकाएं पक्षपातपूर्ण होती हैं, इष्ट का पक्ष होता है, लेकिन इसकी जो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ सी टीका है उसका नाम है श्रीधरी। श्रीधर स्वामी के बारे में एक बात आती है, आप लोगों को मैंने कैसे सुनाया है कभी, एक बार उनको वैराग्य हो गया, कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि दंड कमंडल लेके चल पड़ो, फटे पुराने कपड़े पहनो, ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण से प्रेम हो जाए तब वैराग्य जीवन में अपने आप फलित होता है। खंडन में एक बात लिखी है, वो ममत्वम मुमुक्षु नाम अनिर्वचनीय वादी नाम, आपकी जब समझ बढ़ती है, आपकी प्रज्ञा बढ़ती है, उस समय आपकी समझ में इतनी बात आती है वो ममत्वम, किसी के प्रति ये बुद्धि नहीं रहती है कि ये मेरा है। क्यों नहीं रहती होगी? अच्छा, आप लोग भी तो सब 60 के ऊपर ही हैं लगभग सब, आप लोगों ने अपना बिल विल बनाया कि नहीं? क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है कि मेरा कुछ खंडनकार बहुत बुद्धिमान आदमी थे श्री हर्ष मिश्र, उन्होंने कहा परमात्मा से प्रेम का अर्थ ही इतना है कि आपकी किसी वस्तु के प्रति ममत्व वाली मेरा है ये बुद्धि नहीं है। एक चौकीदार की तरह है, वो वस्तु की देखभाल करता है बड़े प्रेम से, यदि वफादार है तो उसके प्रति बहुत स्नेह रखता है, लेकिन किसी चीज को अपना नहीं समझता, उसकी ड्यूटी पूरी हो गई तो वहां से वो चल देता है। इसी प्रकार से इस जगत के अंदर जो मुमुक्षु व्यक्ति होता है, को ममत्वम मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु को मेरी है ये नहीं समझता, इस वस्तु के साथ में मेरा कितना अदृष्ट जुड़ा है उतना उसका उपभोग करता है और उसके बाद वो अपने आप ही छूट जाती है। को ममत्वम मोक्षो नाम। अच्छा, इसलिए मैं ये कह रहा था आपको कि श्रीधर स्वामी जी महाराज ने ऐसा लिखा है, किसी बच्चे को, अपने बच्चे को किसी चौराहे पे छोड़ते हैं जब हैं, तो किसी ने उनको पूछा, अरे पागल, इसकी देखभाल कौन करेगा? तो श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा जरूर। ये न शुक्ली कृता हंसा सुगाश्च हरिति कृता मयूरा विचित्रिता ये न तेतव्रतिम विदास्यति। उसने उत्तर दिया, उसने एन शुक्ली कृता हंसा, जिस परमात्मा ने हंसों को सफेद बनाया, सुकाश्च हरिति कृता, और तोते को हरा बनाया, उसकी चोंच लाल बनाई, और आगे एक सुंदर बात कहते हैं, मयूरा विचित्रिता येन तेतव्रतिम विरास्यति। और कभी आपने नाचता हुआ मयूर देखा होगा, कौन सा रंग नहीं भरा उसमें, किसने उसको, उसने कौन सी डांस की क्लास ली है, ये संस्कार होते हैं। मयूरा विचित्रिता येन, वो बोलते हैं वो परमात्मा इसका पालन पोषण करेगा, लेकिन ये आप नहीं करना, नहीं तो न धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रहेगा। वो तो जिस व्यक्ति की ममता पूरी तरह से छूट गई है, और ममता ऐसी नहीं छूटी, कंकण पत्थर ऐसे नहीं छूटे, कहीं हाथ में हीरा आ गया इसलिए कंकण पत्थर छूट गए, हाथ में हीरा आए बगैर यदि कंकण पत्थर छोड़ दिए तो जीवन में खालीपन का एहसास होता है, और वो खालीपन ऐसा होता है वो आदमी को आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त कर देता है, और यदि हीरे आ गए तो हीरे आने के बाद कभी शायद जीवन में ये भी बात आती होगी कि मैंने ये क्या पकड़ के रखे थे, मैं किन चीजों में उलझा हुआ था। अपनी नादानी पे अफसोस तब होता है जब आदमी की समझ परिपक्व हो जाती है। जब तक समझ परिपक्व नहीं होती तब तक नादानी पे अफसोस भी नहीं होता। इसलिए यहां पर थोड़ा सा जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं और व्यास बुद्धिमान भी हैं और अनुभवकर्ता भी हैं, दुनिया में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, लेकिन अनुभवकर्ताओं की बहुत कमी है। मान सम्मान की निंदा करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे और समझाएंगे मान सम्मान दो कौड़ी का नहीं होता, लेक्चर देने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक महात्मा बता रहे थे, बड़े विद्वान, सब बड़े बड़े कई लोग इकट्ठे हुए हैं, अब वो कहते हैं हमारे सामने समस्या आ गई, किसको कहां बैठाएं। एक बोले पहले मेरे को बैठाना, दूसरा मेरे को बैठाना, तीसरा मेरे को बैठाना, तो बड़ी मुश्किल, और सब मान सम्मान को सब बोलने वाले, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सब उसकी मान प्रतिष्ठा की आलोचना करने वाले, लेकिन जब बात आई तो बड़ा मुश्किल है। तो कहते हमने क्या किया, गोल बिछाया, और गोल बिछाने के बाद बोला बैठो, अब कौन पहले कौन पीछे कुछ पता नहीं है। बुद्धिमान होना अलग चीज है और अनुभवकर्ता होना अलग चीज है। कबीर ने कहा गूंगा केरी साकरा, मिठाई के ऊपर कितना व्याख्यान दे दो और उसकी जीभ पे थोड़ा सा चीनी रगड़ दो तो घंटों का व्याख्यान व्यर्थ हो जाता है। जब थोड़ी सी चीनी, कोई महात्मा तो मिर्ची बताता था, लेकिन कबीर ने तो लिखा गूंगा केरी साकरा, गूंगे की जो सकर है वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता देती है, वो बोल नहीं सकता, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि कोई खुशी का कारण, कोई प्रसन्नता का कारण। इसी प्रकार से जीवन के अंदर जो चीजें हम सुनते हैं ये बुद्धि का एक व्यायाम हो जाता है। एक बुद्धि की कसरत हो जाती है। हमने देखा एक आदमी बड़ा ये ब्रह्मसूत्र पढ़ाता था, प्राणा पढ़ाता था, फलाना पढ़ाता था, मरते समय उसके सामने कोई व्यक्ति गया, मेरे को बताया उन्होंने, तो बोला अभी बात मत करो कुछ। बुद्धि पलट जाती है, क्योंकि जीवन भर बुद्धि का व्यायाम करते रहे, कभी हृदय में जो बुद्धि ने बोला कभी हृदय में उसका अनुभव करने का तो प्रयास किया ही नहीं। और शास्त्रकार कहते हैं अनुभूति स्वयं प्रकाश, अनुभूतित्वात्, अनुभूति के सिवाय जगत में कोई चीज स्वयं प्रकाश नहीं है, सब बुद्धि का व्यायाम है। आपको भूख कल ग्रहण था, भूख लगी, वो जैसे गूंगे ने शक्कर खाई और उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी, वैसे ही कल जिस व्यक्ति ने ग्रहण का पालन किया होगा उसका चेहरा सांस तक मुरझा गया था, वो दुख का कारण वो अनुभव करता था, दूसरा केवल अनुमान करता था, अनुभव नहीं करता था। इसलिए ये जो ग्रंथ है इसकी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं आपको, ये भगवान वेदव्यास ने जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा उन्होंने ही भागवत लिखा, उन्होंने ही भागवत लिखा। लेकिन थोड़ी सी एक इतनी बात जरा समझनी है कि ब्रह्मसूत्र का जो प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के फलाध्याय का फल भी क्या बताया, ब्रह्मसूत्र सुन चुके हो ना, कुछ कुछ तो सुनाने लायक भी हो गए, लेकिन फलाध्याय ये है खाली बुद्धि की कसरत हो गई, या तो सद्यो मुक्ति फल है या तो क्रम मुक्ति फल है, या तो सद्यो मुक्ति फल है या तो क्रम मुक्ति फल है। भागवत का फल सद्यो मुक्ति है, लेकिन प्रश्न एक बहुत बड़ा ये है कि यहां पर भगवान वेदव्यास ने डायरेक्ट दूसरे सूत्र का निरूपण क्यों किया, प्रथम सूत्र का निरूपण क्यों नहीं किया। तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र के अंदर किसका निरूपण किया गया, मैंने जिज्ञासु का वर्णन, जिज्ञासु कैसा हो, साधक कैसा होना चाहिए और साधक बनने के उपाय बताए गए, जिज्ञासु बनने के उपाय बताए गए। लेकिन ब्रह्म सूत्र में जो जिज्ञासु बनने के उपाय बताए, भागवत जो है वो मुक्ति भी प्रदान करती है और जिज्ञासु भी बनाती है। लेकिन ब्रह्म सूत्र में आपको पहले विवेक, वैराग्य, सड़संपत्ति और मुमुक्षुता से संपन्न होना पड़ता है, और श्रीमद् भागवत आपको विवेक, वैराग्य, सड़संपत्ति और मुमुक्षुता भी प्रदान करती है और मुक्ति भी प्रदान करती है। संत लोग उसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे बाबुलनाथ जी जाते हैं दर्शन करने के लिए, श्रीनाथ जी अभी कभी गए होंगे, आप कभी गए होंगे, दिन में भगवान का दर्शन करते हैं तो पहले आपको स्नान स्नान करके तैयार हो करके और फिर जाना पड़ता है। अच्छा, आप थोड़ा बुद्धि से विचार करिएगा, थोड़ा सा श्रीनाथ जी के दर्शन करने से ज्यादा पुण्य मिलता है कि गंगा स्नान करने से ज्यादा पुण्य मिलता है, क्या लगता है आपको? दोनों एक ही है ना। लेकिन श्रीनाथ जी के लिए भी आपको जाना है तो पहले स्नान स्नान करके तैयार होकर के जाना पड़ेगा पहले, और गंगा में आपको स्नान भी हो, गंगा आपको पवित्र भी करती है और पुण्य भी प्रदान करती है, लेकिन वहां जो है बिना नहाए धोए जाओगे, महादेव के मंदिर में बिना नहाए धोए, शास्त्रों में लिखा है देवम भूत्वा यजेत देवान, पहले देवता बनो फिर देवताओं की पूजा करो। तो ब्रह्मसूत्र ऐसे ही है, पहले आपको विवेक, वैराग्य, सड़संपत्ति संपन्न होना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रह्म सूत्र में आपकी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि पहले सूत्र के अंदर अधिकारी का निरूपण है। लेकिन भागवत की खासियत क्या है? यहां हमें अधिकारी बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ब्रह्म सूत्र में, और अधिकारी बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और मैं नहीं समझ सकता कि आजकल कोई वो पुरुषार्थ कर सकता है। पुरुषार्थ करते करते गिर जाता है, खाली एक बुद्धि की कसरत कर सकता है बस, कहां विवेक संपन्न होगा, कहां वैराग्य संपन्न होगा, कहां जीवन में सड़संपत्ति आएगी, कहां जीवन में मुमुक्षुता आएगी, तब जाकर के वो ब्रह्म सूत्र के करीब पहुंचेगा। भागवत कहती तू जैसा है वैसा आजा, तेरे को विवेक भी कराऊंगी, वैराग्य भी कराऊंगी और मुमुक्षु भी बनाऊंगी, सब कर। तो साधन संपन्न भी बनाता है, इसलिए सीधा दूसरे स्वरूप का निरूपण, दूसरे सूत्र का निरूपण किया, जन्माद्यस्य हेता। अब देख लीजिए थोड़ा सा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा निर्गुण की गई कि सगुण की गई? किसकी की गई? बिल्कुल बिल्कुल निर्गुण की जिज्ञासा की गई। लेकिन जो उत्तर दिया गया जन्माद्यस्य यता, ये क्या है? सगुण निराकार। ये समझ लो कि कोई कृष्ण ने धरती उत्पन्न नहीं करी है, आकाश उत्पन्न नहीं किया है, ये सगुण साकार हैं। जो सगुण निराकार है, जिज्ञासा की गई निर्गुण निराकार की, हमने बोला आपका नाम क्या है, आपने बोला मैं घर से आ रही हूं, आपने सही बोला आप घर से आ रहे हैं, लेकिन उत्तर तो वो नहीं हुआ। ऐसे ही जिज्ञासा की गई निर्गुण निराकार की और प्रतिपादन किया जा रहा है सगुण निराकार का। इसका राज क्या है? इसका राज तुलसीदास ने खोल लिया, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। अब यदि भेद नहीं है तो निर्गुण निराकार के बोध से जो मुक्ति आपको होती है वही सगुण निराकार के बोध से वही मुक्ति आपको। इसलिए भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जनमाद्यस्य यतः अन्वयतरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् अर्थेषु विज्ञः। अर्थेषु विज्ञः का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। अर्थ हो गए ये सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब, इसको बोलते हैं अर्थ। और विज्ञ बोलते हैं जानकार के लिए। आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ जानने वाला जो है उसको बोलते हैं अर्थेषु विज्ञः। जो अर्थेषु विज्ञः है, जैसे आंख जो है वो रूप की विज्ञ है, कान जो है वो शब्द का विज्ञ है, लेकिन ये जो विज्ञ है ये अहम के द्वारा दूसरे को, ये स्वयं प्रकाश नहीं है। इसलिए परमात्मा कैसा है वो अर्थ का विज्ञ भी है और स्वयं प्रकाश भी है। आंख रूप को जानती है, जैसे आपको जो चीज नहीं दिखाई देती वो चीज आपको चश्मे से साफ दिखाई देते। अखबार पेपर नहीं पढ़ाई में आता है ना, तो हम लोग चश्मा लगा देते हैं तो अर्थ को इससे जानते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं पढ़ सकता। हाँ उसको ही, लेकिन परमात्मा जो है वो अर्थ को जानता है और कैसा है, स्वयं प्रकाश है। और आगे दूसरे श्लोक में वो सुंदर बात लिखते हैं तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मूयन्ति यत् सूरया। आदि कवि, आदि कवि, कवि बोलते हैं क्रांतदर्शी के लिए, जिसने इस सृष्टि का नक्शा बनाया। मैं तो कभी आपको बताता हूं कैसी आपकी नाक बनाई, कैसी आपकी आंख बनाई और कैसा इतना बड़ा पेट बना दिया जिसने हजारों टन खा दिए। आदि कवये, कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी, जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना करी। और इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करी लेकिन उसको भी आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में एक बात लिखी है जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अज्ञान मूलक हैं। सर्वारंभाई दोषेण, तीसरा अध्याय पढ़ा, जित सर्वारंभाई दोषेण सब। जैसे अग्नि के साथ में धुआं है ऐसे ही कर्म के साथ में अज्ञान है। ये सृष्टा के लिए ये कार्य हुआ तो भगवान ने सोचा कि इसको ज्ञान हो जाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को हृदय माने संकल्प, संकल्प जो है हृदय माने संकल्प, अपने संकल्प मात्र से ही उसको वो आत्मज्ञान दे दिया। कौन सा आत्मज्ञान? मूयंत यत् सूरया, जिसको ज्ञान करने में बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो जाते हैं। सूर्य, सूरी बोलते हैं सूरी, जैसे श्रीमद भागवत के दस एक टीकाकार हो गए, उनका नाम था श्री हरि सूरी, जो वैष्णवों के बड़े बड़े आचार्य होते थे उनको सूरी बोलते हैं, हरि सूरी उनका नाम था। भक्ति रसायन लिखा उन्होंने दसम स्कंद के ऊपर, उत्प्रेक्षाएं हैं उसकी, जिसमें बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। वो ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से दे दिया। श्लोक अर्थ लग गया, जन्माद्यस्यता अन्वय तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी कल करेंगे क्योंकि टाइम हो गया।